प्रांजल निखिल से प्रियल के लिए झगड़ा कर रही थी। उसे निखिल की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो प्रियल से प्यार करता है। निखिल ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले और घूमकर प्रांजल की तरफ होते हुए बोला, मैंने कोशिश की थी बताने की, पर तुम्हारी बहन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काफी अच्छा और जबरदस्त वाला प्लान बनाया था मैंने। प्रांजल बोली, मैं कैसे मान लूं आपकी बात? मान ही ना लूं मैं आपकी बात? अपनी बहन वाला डायलॉग मारना बंद करो। मारूंगी, आप में हिम्मत है तो मुझ पर कॉपीराइट लगाकर बताओ। अर्जुन प्रांजल की तरफ हुआ और बोला, प्रांजल ये सच बोल रहा है। याद है मैंने तुझे बताया था निखिल ने मेरा फोन ले लिया है? वो इसलिए लिया था क्योंकि मैंने इसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था जब ये बोल रहा था वो प्रियल से प्यार करता है। मैंने कहा था मैं प्रियल को सब कुछ सुना दूंगा, तब इसने मुझसे मेरा फोन छीन लिया। क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ सच में, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम मेरी बात पर तो यकीन करो, ये सब मेरे साथ ही हुआ था। प्रांजल खामोश पड़ गई। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने निखिल से कहा, निखिल सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आप सच में मेरी दीदी से प्यार करते हो? उसे हमेशा खुश रखोगे ना? वो थोड़ी भावुक हो गई थी। निखिल ने मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं मैं उसे बिल्कुल खुश नहीं रखने वाला। उसने मुझे जितना तंग किया है उतना ही मैं उसे तंग करूंगा। फिर वो हंसता हुआ बोला, अफकोर्स, मैंने पहले भी कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एली का दिल किसके पास है किसके पास नहीं। मैं बस इसीलिए जानना चाहता था ताकि जिस भी इंसान के पास मेरी एली का दिल हो उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। अगर उसे कोई मदद की ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं। और रही बात प्रियल की, तो मेरे प्यार को किसी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इस बात से भी खुश हूँ कि एली का दिल किसी और के पास नहीं, बिल्कुल प्रियल के पास ही है। एमा बोली, और वैसे भी प्रांजल, निखिल को तो दो दिन पहले ही पता चला था एली का हार डोनेट किया था। इतने दिन तक तो इसे पता भी नहीं कि ये बात। सॉरी, प्रांजल ने अपने कान पकड़कर कहा। निखिल को ये देखकर हंसी आ गई। अरे रहने दो, बंदरों के मुंह पर सॉरी अच्छा नहीं लगता, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। प्रांजल गुस्से से लाल होते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे? अर्जुन बोला, बंदर, बंदर जिसे इंग्लिश में मंकी भी कहते हैं। उतने में नानी और मामा मामी घर पर आ गए। इतने सारे लोगों को घर पर देखकर वो हैरान हुई। ये सब कौन है? उसने घर के अंदर आते हुए कहा। प्रांजल बोली, नानी ये वही है अपना निखिल, और बाकी के लोग उसके दोस्त हैं। नानी निखिल को देखकर उसकी तरफ जाते हुए बोली, अरे तो ये है मेरी गुड़िया का नीली आंखों वाला हीरो है, पर ये खोटे का पुत्र यहाँ पर क्या कर रहा है? नानी की बात सुनकर उन सबको हंसी आ गई। जैनी नानी की तरफ देखते हुए बोली, नानी यू आर सो क्यूट। प्रांजल ने नानी की बात का जवाब दिया, नानी ये आपकी गुड़िया को चुराने आया है हमसे, किडनैप करेगा ये हमारी प्रियल को। निखिल उसकी तरफ हुआ और बोला, हाँ अब यही देखना बाकी रह गया था। प्रांजल हंसती फिर वो घर वालों की तरफ हुई और उन्हें सारी बात बता दी। मामा मामी को भी निखिल के बारे में पता था, किसी को भी उससे किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। नानी को तो काफी पहले से पता था। सब इस बात को लेकर खुश थे कि निखिल प्रियल को पसंद करता है। निखिल ने सभी की तरफ देखा और कहा, क्या आप सब लोग मेरी मदद करोगे प्रियल को प्रपोज करने में? क्योंकि मैंने अगर खुद से प्लान किया तो हर बार की तरह मिस शर्मा सब कुछ गड़बड़ कर देगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी थोड़ी मदद करो। नानी अपने ऊपर हाथ मारते हुए बोली, ओए ये भी कोई कहने की बात है? तुम चिंता मत कर, सब कुछ एकदम परफेक्ट कर देंगी प्रांजल और अर्जुन मिलकर। एमा ने अपने चेहरे पर परेशानी वाले भाव दिखाए और बोली, तब तो हो गया नानी सब कुछ परफेक्ट। उतने में प्रियल वहां पर आ गई। उसके आते ही सब लोगों ने अपनी बात बदल दी। सब लोग इधर उधर की बात करने लगे। प्रियल ने आकर पूछा, क्या बात कर रहे हो आप सब? जैनी उसके पास आई और बोली, कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ, अमृतसर नहीं घुमाओगे क्या हम? और ये कहकर वो उसे वहां से ले जाने लगी। रोहन सभी से बोला, क्यों ना हम सब मिलकर गोल्डन टेम्पल चलें, मजा आएगा। नानी इस पर हामी भरते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल जरूर जाओ। प्रियल बोली, पर नानी आपको तो देर तक बाहर घूमना पसंद नहीं है, हम लोग इस वक्त बाहर जाएंगे तो लेट हो जाएगी ना आने तक, हम कल सुबह चले जाएंगे फिर शाम तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा जाओ, नानी ने हंसते हुए कहा, इतने लोग साथ में हो तो क्या डर? और वो क्या बोल रही थी कल रात को तुम? अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो जाओ, बड़े बड़े ऐसे दिन रात नहीं देखते। निखिल पीछे हटते हुए बोला, आप लोग जाओ, मुझे रेस्ट करना है, मैंने कल सुबह से ठीक से रेस्ट नहीं किया। अर्जुन और प्रांजल ने कहा, सॉरी गाइस हम लोग भी नहीं जा रहे, एक्चुअली नानी के पास भी तो यहाँ किसी को रुकना पड़ेगा। प्रियल उनकी तरफ हुई और पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोग क्यों नहीं जा रहे? हमने तो प्लान किया था ना गोल्डन टेम्पल जाने का। अर्जुन बोला, फिर कभी चल जाएंगे यार, एक बार निखिल को थोड़ा कंपनी देते हैं, ये भी तो बेचारा यहाँ अकेला है, तो मैं भी कंपनी देती हूँ इसे। निखिल ने कहा, पर मुझे आपकी कंपनी नहीं चाहिए मिस शर्मा, आप चाहिए। और तुम ऐसे कैसे कंपनी दोगी? जैनी ने उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, तुम इसे कंपनी देने लग गई तो हमारा क्या होगा? वो लोग प्रियल को जबरदस्ती ले गए। उन लोगों के जाने के बाद अर्जुन प्रांजल और निखिल मिलकर तैयारियां करने लगे। सोनू मामी उनके पास आते हुए बोली, क्या मैं कुछ मदद करूं क्या? दीपक मामा भी आए और निखिल से बोले, आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप बेहिचक बोल दीजिएगा। सर, अगर आपके लिए हम कुछ कर पाएंगे तो हमें खुशी होगी। निखिल ने कहा, मामा जी आप मुझे सर क्यों बोल रहे हो? पता नहीं, पर वो आप इतने बड़े, निखिल ने मध्यम स्वर में कहा, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं लेकिन आप सब लोगों से छोटा ही रहूंगा। मैं भी आपके लिए आपके बेटे जैसा ही हूं। मेरी खुद की तो कोई फैमिली नहीं है, लेकिन आप लोग भी मेरी फैमिली ही हो, तो प्लीज़ मुझे मेरे नाम से ही बुलाइएगा, ना कि सर या कुछ और। नानी निखिल की ये बात सुनकर खुश हो गई। ओए मुंडा किन्ना सोना है, और गल्ला भी किनिया सोनिया सोनिया करदानी, हाय हाय नज़र ना लग जावे मेरी। प्रांजल ने कहा, नानी इसकी तारीफ मत करो, ऐसे ही नक चढ़ाए और ज़्यादा हो जाएगा। आसमान में उड़ने लगा तो उतरने पर भी नहीं उतरेगा। निखिल उसकी तरफ हुआ और बोला, तुम तो जैसे आसमान में काफ़ी ऊपर तक घूम कर आई हो। अर्जुन कमरे में पंखे की तरफ देख रहा था। उसने पंखे की तरफ देखते हुए सोचने वाला चेहरा बनाया और बोला, मैंने सब सोच लिया है, मैं पंखे के ऊपर फूल रख दूंगा, तुम पंखे के नीचे खड़े होकर उसको आई लव यू बोल देना और मैं पंखा चला दूंगा, तुम दोनों पर फूल बरसेंगे और पूरा नज़ारा फिल्मी हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? प्रांजल बोली, यक अर्जुन, आई मीन छी, मुझे कोई लड़का ऐसे प्रपोज करे तो मैं उसके मुंह पर ना बोलूं और दो जूतियां मारूं सो अलग। एग्जैक्टली, निखिल बोला, प्लीज़ अपनी घटिया आइडियाज़ को अपने पास ही रखो। अब समझ में आया तुम उती तक सिंगल क्यों हो? अर्जुन बोला, ओ प्लीज़ मैं कोई सिंगल नहीं हूँ, मेरे तो तीन चार गर्लफ्रेंड्स हैं। उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं। और देखा था मैंने जब तुम अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के दादाजी के फ्यूनरल में थे? अर्जुन मुँह गनाता हुआ बोला, हाँ तो तुम खुद कर लो, मैं नहीं पढ़ रहा कुछ अब। निखिल कुछ सोचते हुए मामा जी से बोला, मामा जी क्या यहाँ पर कोई डेकोरेशन शॉप है जहाँ पर ये सब सामान रेंट पर मिल सकता है? हाँ हाँ जरूर मिल जाएगा, आप मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, अभी ले आऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं मामा जी आप क्यों जाओगे, अर्जुन किस दिन काम आएगा? मैं लिस्ट बना देता हूँ, अर्जुन तुम जाओ सारा सामान लेकर आओ, हम टेरिस पर डेकोरेशन करते हैं।
निखिल ने अर्जुन को लिस्ट बनाकर दे दी। अर्जुन आधे घंटे में डेकोरेशन का सामान लेकर आ गया, जिसके बाद वो दोनों मिलकर टेरिस पर डेकोरेशन करने लगे। प्रांजल ने पूरी डेकोरेशन देखी तो वो बोली, वाह निखिल, इट्स अमेजिंग, तुमने तो ये बहुत शानदार किया है। अमेजिंग तो नहीं कह सकते, ना ही ये इतनी शानदार है, लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था, पर तुम्हारी बहन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अर्जुन सोचते हुए बोला, वैसे क्या गड़बड़ कर दी थी? निखिल ने ना में सिर हिलाया, छोड़ो हम दोनों के बीच की बात है। अर्जुन इस बात को छोड़ दिया, मगर तभी उसे गुब्बारे दिखे जो उसने फुलाए थे। तुझे पता है फुगे फुलाते फुलाते मेरा मुंह दर्द करने लगा और तुमने लगाई भी नहीं। निखिल बोला, तुम्हारे बर्थडे पार्टी पर लगवाएंगे। तभी नीचे उन्हें कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। प्रांजल बोली, लगता है वो लोग आ गए, एक काम करो तुम दोनों यहीं पर रहना, मैं दीदी को रेडी करके लाती हूँ। ये कहकर प्रांजल नीचे चली गई। प्रांजल नीचे पहुंची तो सब लोग उसे दिखाई दिए। प्रियल ने आते ही पूरे घर को देखा जहां उसे निखिल और अर्जुन नहीं दिखाई दिए। उसने प्रांजल से पूछा, निखिल और अर्जुन कहाँ हैं? प्रांजल ने उसके पास आते हुए कहा, दीदी सांस तो लो, घर पर आई नहीं कि निखिल और अर्जुन कहाँ हैं, यहीं हैं दोनों, कहीं नहीं भाग रहे वो लोग। प्रांजल ने ऐसा कहा तो सभी लोग समझ गए उन्होंने मिलकर कुछ प्लानिंग की है। जैनी ने कहा, अच्छा प्रियल, हम चारों को यहाँ पर किसी फ्रेंड से मिलने जाना था तो हम लोग उन्हें मिलने जा रहे हैं। प्रियल हक्की बक्की बोली, यहाँ पर तुम लोगों के कौन से फ्रेंड हैं? रोहन बोला, अरे यहाँ आने से पहले मिले थे किसी फंक्शन में, इनवाइट किया था हम लोगों को, हम अटेंड करके रात को आ जाएंगे या फिर वहीं रुक जाएंगे। पर निखिल? प्रांजल बोली, अरे वो तो कब का गया, और अर्जुन भी गया है उसके साथ में कंपनी देने, मतलब वो दोनों फंक्शन के लिए ही गए हैं। सभी ने आपस में मिलकर बात को संभाला। प्रियल को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले क्या नहीं, इसलिए उसने कहा, ठीक है जाओ आप लोग। प्रांजल ने प्रियल का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ खींच कर ले जाते हुए बोली, अच्छा दीदी हमें भी कहीं फंक्शन में जाना है, चलो हम भी रेडी हो जाते हैं। पर हम कौन से फंक्शन में जाना है? प्रियल ने पूछा। वहीं जहां सुबह नानी और गए थे, प्रांजल बोली। प्रांजल प्रियल को लेकर कमरे में चली गई, जिसके बाद सभी लोग टेरेस की तरफ चले गए। वहां अर्जुन सभी को छुपकर देख रहा था और प्रियल के जाने के बाद उसने सभी को ऊपर आने का इशारा कर दिया था। प्रियल कमरे के अंदर बोली, नानी ने तो नहीं बताया कोई फंक्शन का, वो फंक्शन खत्म नहीं हो गया। तुम चुप करो दीदी, क्यों इतने सवाल पूछती हो? प्रांजल ने कहा और प्रियल को जबरदस्ती तैयार कर दिया। पूरा तैयार होने के बाद प्रियल ने खुद को देखा और बोली, प्रांजल तेरा दिमाग तो खराब तो नहीं हो गया? हम यहाँ पंजाब में हैं, ना कि यूएसए में। क्रिश्चियन शादी में तो जा नहीं रहे, जो ये व्हाइट कलर का इवनिंग गाउन पहना दिया, आखिर ये किस तरह का ड्रेसअप किया है तुमने मुझे? प्रांजल बोली, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम इंडिया से बाहर रहते हैं, ऐसे तैयार होकर जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, देख तो एकदम प्रिंसेस जैसी लग रही है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वहां का दुल्हा अपनी दुल्हन को छोड़कर केरे कोई प्रपोज ना कर दे। क्या बकवास कर रही है तू, मुझे काटूं क्या जैसा बना दिया? फिर उसने प्रांजल की तरफ देखा और कहा, खुद कब तैयार होगी? हो जाऊंगी तो, तब तक तुम टेरेस पर हमेशा की तरह चक्कर लगा कर आओ, तुम्हारे आने से पहले मैं तैयार हो जाऊंगी। यार मुझे भूख लगी है और तुम मुझे चक्कर लगाने को बोल रही हो, प्रियल ने बेड पर बैठते हुए कहा। प्रांजल बोली, अरे तुम जाओ ना यार, कितनी ड्रामा कर रही हो। प्रांजल ने उसे बेड पर खड़ा किया और धक्का मारकर टेरेस की तरफ जाने के लिए कह दिया। प्रियल जब गोल्डन टेम्पल घूमकर घर आई थी तब शाम हो रही थी। अब जब वो टेरेस पर जा रही थी तो रात हो चुकी थी। ऊपर की सभी लाइट बंद थी। निखिल छत के बीचों बीच खड़ा था और बाकी सभी लोग इधर उधर छुपे हुए थे। प्रांजल धीमे कदमों से प्रियल के पीछे पीछे आई और छत पर आते ही वो भी एक तरफ जाकर छुप गई। प्रियल ने आसपास देखते हुए कहा, अब यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये कहकर वो लाइट के बल्ब की तरफ गई और बल्ब चला दिया। जैसे ही उसने बल्ब चलाया उसने डेकोरेटेड टेरेस देखा। वो इसे देखकर सरप्राइज हो गई। तभी उसे निखिल दिखा। निखिल उसके पास आया और आकर उसे हग कर लिया। निखिल के हग करते ही प्रियल का दिल जोर से धड़कने लगा।